संकल्पवान मेरे युवा मित्रों, आप सभी को डॉक्टर विजय अग्रवाल का नमस्कार। दोस्तों, आज 27 अप्रैल 2017 है और आज के इस afis.com के डेली ऑडियो लेक्चर में मैं आप सभी अपने दोस्तों का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। और आप सबके स्वागत के साथ ही मित्रों, आप सबकी ओर से, एकेडमी की अपनी पूरी टीम की ओर से, मैडम प्रीति अग्रवाल की ओर से और अपनी ओर से बधाई देना चाहूंगा हमारे थर्ड बैच के स्टूडेंट पंकज पुरोहित को, जो चमोली उत्तराखंड के रहने वाले हैं। उन्होंने ईमेल के जरिए सूचित किया है कि उत्तराखंड पीएससी के एग्जामिनेशन का प्री उन्होंने क्वालिफाई कर लिया है। तो पंकज, इसके लिए हम सबकी ओर से आपको बहुत बहुत बधाइयां और भविष्य की और सफलताओं के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं भी। मित्रों, अब एक छोटी सी बात मैं आपसे शेयर कर लूं, फिर हम न्यूज एनालिसिस पर आएंगे। छोटी सी बात यह है कि हम लोगों ने afis.com पर आपने देखा होगा कि मॉक टेस्ट उपलब्ध कराए हुए हैं। मुझे उम्मीद है कि आप सब ने वो मॉक टेस्ट देखे होंगे और उनके लिए थोड़ा सा समय भी निकाला होगा। मित्रों, चूंकि अब आपके एग्जाम काफी नजदीक हैं, लगभग यूं कह लीजिए कि मोटे तौर पर अब 1.5 महीने का ही वक्त बचा है, तो चूंकि आप लोग कहते हैं ना कि प्री के लिए भी आप कुछ टिप्स दीजिए, कुछ गाइड कीजिए, तो उसी के तहत मैं ये बात कह रहा हूं। तो मित्रों, ये वो दौर है जब आपको अब मॉक टेस्ट के प्रति थोड़ा सा सतर्क हो जाना चाहिए, थोड़ा गंभीर हो जाना चाहिए। गंभीर इस मायने में कि देखिए, जो प्री एग्जामिनेशन है, वो प्री एग्जामिनेशन दिमाग के एक अलग तरह के रिदम की मांग करता है। रिदम की मांग कहने का मतलब है कि जो प्री एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछने का पैटर्न है, आप देखते हैं कि वो दूसरों से एकदम अलग है। यहां तक कि आप स्टेट सिविल सर्विस के क्वेश्चन पेपर देखिए, तो है तो वही ऑप्शनल, आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, ऑब्जेक्टिव टाइप के ही है, लेकिन जो फ्रेमिंग ऑफ द क्वेश्चंस है, क्वेश्चन प्रश्नों की जो बुनावट है, वो बिल्कुल डिफरेंट है। इस मायने में डिफरेंट है कि जब आप दूसरे कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन के ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन देखेंगे तो वो आपको सरल से मालूम होंगे। मतलब एक तरीके से कह लीजिए कि या तो नेशनल हाईवे है या स्टेट हाईवे है, आपको ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। लेकिन जब आप सिविल सर्विस के क्वेश्चंस देखेंगे, है वो भी ऑब्जेक्टिव ही, तब आपको लगेगा जैसे कि आपको भूल भुलैया में फंसाया जा रहा है, और यही उसकी सबसे बड़ी चुनौती है। तो अब ये भूल भुलैया में आप फंसे नहीं, इसके लिए क्या करेंगे? इसी के लिए मैंने कहा कि एक रिदम की जरूरत होती है, कि मतलब आपके दिमाग का तालमेल क्वेश्चंस के स्वरूप या उससे जो ध्वनि निकल रही उससे बैठ जाए, दोनों के सुर मिल जाए। अब ये सुर मिलेंगे कैसे? मित्रों, ये सुर ज्ञान से नहीं मिलेंगे। आप रट जाइए, पूरा पढ़ जाइए, उससे नहीं मिलेंगे। ये सुर मिलेंगे सिर्फ अभ्यास से, सिर्फ प्रैक्टिस से। तो मुझे लगता है कि अब चूंकि 1.5 महीने का ही वक्त रह गया है, तो आप सबको जो इस बार के एग्जामिनेशन में अपीयर होना चाह रहे हैं, उन्हें प्रैक्टिस करना शुरू कर देना चाहिए। देखिए, जब मैं प्रैक्टिस की बात कर रहा हूं, तो आप इसी तक सीमित मत रखिए कि अगर आपने कोई क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लिया है, जैसे एफई ने जो प्रोवाइड किए हैं आपको मॉक टेस्ट, मान लीजिए कि एक बार आपने उन्हें सॉल्व कर लिया है, तो अब आपको लग रहा है कि इन्हें दोबारा सॉल्व करने का कोई मतलब नहीं, आप उन्हें फिर से सॉल्व कर सकते हैं, बार बार सॉल्व कर सकते हैं, और दूसरे पेपर्स अवेलेबल है उन्हें भी सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि आप जितना ज्यादा सॉल्व करेंगे, देखिए, लय का तालमेल उतना ज्यादा बैठेगा। इंपॉर्टेंट बात यह नहीं है कि आप कितने क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, वो तो अल्टीमेटली है ही। यहां जो इंपॉर्टेंट बात है जिसकी चर्चा मैं कर रहा हूं, वो ये है कि आपके दिमाग का रिदम क्वेश्चन पेपर के रिदम से मैच कर जाए, तब फिर आप देखेंगे कि जैसे ही ये मैच करेगा, तो ये जो भूल भुलैया आपको दिखाई दे रहा, आप उस भूल भुलैया से किनारे हो जाएंगे, आप उसमें माहिर हो जाएंगे और फिर आप स्ट्रेट नॉलेज पर पहुंच जाएंगे। अदरवाइज भूल भुलैया में ही उलझे रहेंगे और नॉलेज जो दिखाई देना चाहिए कि इसमें पूछ क्या रहा है या इसका उत्तर क्या होना चाहिए, वह आपके दिमाग की आंखों से धुंधला पड़ जाएगा, इतना स्पष्ट दिखाई नहीं देगा। तो मित्रों, मुझे यकीन है कि आप सब मॉक टेस्ट सॉल्व कर रहे होंगे, चाहे वो एफई के हों या और दूसरे जो अवेलेबल हों, और यदि आपने पहले कर लिया है और आप अब सोच रहे हैं कि चूंकि कर चुके हैं तो अब उसकी जरूरत नहीं है, तो प्लीज मैं उसी को थोड़ा सा रिवर्स करना चाह रहा हूं कि अभी ही उसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। दोस्तों आइए अब मैं आता हूं न्यूज एनालिसिस पर। काफी न्यूज है, कंटेंट के फार में आज काफी न्यूज है, तो पहले तो मैं उन सबकी थोड़ी थोड़ी आपको चर्चा कर देता हूं। सबसे पहले तो क्या, चलिए हम चर्चा करते ही चलते हैं। मित्रों, न्यू दिल्ली के म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, दिल्ली नगर निगम के जो चुनाव हुए हैं वो आपको बहुत अच्छे से मालूम है, टीवी चैनल्स भी उसी से भरे हुए हैं, अखबारों में भी हेडलाइन न्यूज वही है। उसको लेकर के मैं अभी कोई चर्चा आपसे नहीं करना चाह रहा और कोई ऐसी जरूरत भी मैं नहीं समझता हूं, लेकिन फिर भी थोड़ी सी जानकारी इस मायने में हो। आप देखिए कि किसी भी नगर निगम के चुनाव इतने महत्वपूर्ण हो रहे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे कि किसी राज्य के विधानसभा के चुनाव हो रहे हों, और ये अच्छी बात है। मतलब ये व्यंग वाली बात नहीं है, ये उपहास वाली बात नहीं, ये बहुत अच्छी बात है। क्योंकि देखिए, अगर हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं और रूट लेवल की डेमोक्रेसी की बात करते हैं, तो हमें चाहे पंचायत के चुनाव हो, नगर पालिकाओं के चुनाव हो या नगर निगम के चुनाव हो, उनको तरजीह देनी होगी। और फ्रीडम मूवमेंट के समय में आप देखिए कि जो हमारे बड़े रिनाउंड लीडर हुए हैं, चाहे आप जवाहरलाल नेहरू जी को ले लीजिए या सुभाष चंद्र बोस को ले लीजिए या वल्लभ भाई पटेल को ले लीजिए, इन्होंने जो अपने पॉलिटिकल कैरियर की शुरुआत की थी, ये लोकल सेल्फ बॉडी से ही की थी। लोकल सेल्फ, नगर निगम नगर पालिकाओं से इन्होंने अपने कैरियर की शुरुआत की है, क्योंकि हमें जो डेमोक्रेसी है उसको वहीं तक पहुंचाना है। तो इस रूप में बहुत अच्छी बात है कि अब कम से कम नगर निगम नगर पालिकाओं के चुनाव को भी इतनी तरजीह दी जाने लगी है। तो आप इस पर थोड़ा सा विचार कर सकते हैं, इस मुद्दे पर जिस एंगल से मैंने बात की है। दूसरा, आपने एक देखा दोस्तों, इसी की न्यूज के बाद में थे कि अभी भी जब नगर निगम के चुनाव हुए हैं उसमें आप पार्टी बुरी तरह से हारी है, बुरी तरह से हारी है। जो पार्टी दो साल पहले आप इमेजिन कीजिए कि इतने अधिक बहुमत से आई है, कि उतने अधिक बहुमत से अब क्या हो सकता है। अगर कोई 70 सीटों में 67 सीट जीत ले तब यार उससे ज्यादा क्या चाहिए। सुनामी ही आए तो बात अलग है कि 70 के 70 आपकी झोली में है। और दो साल के बाद आज उसकी हालत यह है कि 270 में उसके पास सिर्फ 48 सीटें हैं। मतलब दो साल के अंदर किसी पार्टी का इतना ग्राफ गिरे। ठीक है कि ये विधानसभा के चुनाव नहीं थे, राजौरी गार्डन में कुछ समय पहले जो एक विधानसभा का चुनाव भी, जो उपचुनाव हुए, उसमें भी आप पार्टी का तो जमानत जब्त हो गई। तो दोस्तों, ये एक भारतीय लोकतंत्र की क्या मेच्योरिटी को प्रमाणित कर रहा है। जनता मूर्ख नहीं है। आप मत कहिएगा कि आप पार्टी को उस समय दिल्ली वालों ने वोट देकर के कोई गलत काम किया या मूर्खतापूर्ण काम किया, नॉट एट ऑल। थोड़ी सी तटस्थता से सोचिएगा। उस समय पूरा का पूरा देश, सच पूछे तो, करप्शन के खिलाफ एक तरीके से आग बबूला था। उसको लग रहा था उसको कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था, चारों तरफ उसको भ्रष्टाचार, चाहे वो जिस मात्रा में भी रहे, लेकिन लग रहा था कि सिर्फ यही है। उसमें अन्ना हजारे एक रोशनी की तरह आए। आप देखिए कि अन्ना हजारे ने कोई नेशनल मूवमेंट नहीं छेड़ा था, कोई ऑर्गेनाइजेशन खड़ा नहीं किया था, वो दिल्ली में जाकर के केवल बैठ गए थे और पूरे देश में भ्रष्टाचार के खिलाफ एक आक्रोश उमड़ पड़ा था, मतलब आंदोलन जैसा हो गया। तो ये हमारे देश के मूड को दिखाता है। और उसी मूड के दौर में आप पार्टी का जन्म हुआ। उसने एश्योर किया पब्लिक को कि इसमें भ्रष्टाचार को खत्म करने में हम आपकी मदद करेंगे। पब्लिक उसके पीछे हो गई। पब्लिक गलत नहीं होती है, पब्लिक ठगी जाती है। दो साल में शायद उसे लगा कि नहीं, ये तो हमारी बात नहीं बनी, जो कहा गया था वो उसके बिल्कुल विपरीत हो रहा है। तो फिर पब्लिक होशियार होती है, अब उसने ये रास्ता चुना। तो इसलिए फ्रेंड्स, जब हम डेमोक्रेसी की एनालिसिस करें, इस तरह के चुनावों के परिणामों की एनालिसिस करें, तो दो चीजें बहुत जरूरी होती हैं। पहली बात तो ये है कि हम जनता के रिक्वायरमेंट को देखें कि वो चाह क्या रही है, उसका मूड क्या है, और दूसरा यह कि मूड के अनुकूल फिर वो जो वोटिंग पैटर्न है उससे वो मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है। मूड को तो देखिए आप समय से जोड़कर चल सकते हैं कि अभी समय की क्या मांग है। इसी दौरान आप देख रहे हैं कि आप पार्टी हारी है और उसने अब इस हार का ठेकर फिर से ईवीएम मशीन पर डाला है कि जो वोटिंग मशीन है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है, यही गड़बड़ है। इस पर जो बयान है चुनाव आयोग का, वो बहुत अच्छा बयान है। उसने कहा कि चुनाव आयोग पर कोई भी दबाव नहीं डाल सकता। ये बहुत इंपॉर्टेंट बयान है, यानी कि चुनाव आयोग को हमारे संविधान में जो इंडिपेंडेंसी दी गई है वो बहुत महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, ये दूसरी खबर थी। तीसरी खबर के रूप में मैं आपसे नक्सलवाद को लेकर के थोड़ी सी बात करना चाहूंगा फ्रेंड्स। नक्सलाइट जो अभी सुकमा में छत्तीसगढ़ में हुआ जो घटना हुई है, अब आप देख रहे हैं कि नक्सलियों को कैसे कंट्रोल में किया समाप्त किया जाए, कंट्रोल में क्या करना है, कैसे उन समूल नष्ट किया जाए, इसको लेकर के अब आर्टिकल आने शुरू हो गए हैं, एक्सपर्ट भी लिख रहे हैं और आपको ढेर सारा मटेरियल मिलेगा। मैं आपको इससे पहले भी कह चुका था, फिर से मैं कह रहा हूं कि प्लीज आप जो सिविल सर्विस की तैयारी होती है आपको दूसरों से थोड़ा सा बेहतर दिखाना है अपने आप को, तो कैसे दिखाएंगे? तो अब देखिए नक्सलवाद पर आप आर्टिकल्स पढ़ेंगे, एडिटोरियल कमेंट्स पढ़ेंगे और भी डिस्कशंस में सुनेंगे, तो उस वो जब भी आप सुनते हैं कहीं आपको अगर नया पॉइंट मिलता है तो वो पॉइंट आप नोट कर लीजिए। आपको आर्टिकल्स के कलेक्शंस नहीं चाहिए, काट काट कर रखने का कोई अर्थ नहीं, उसमें से देखिए कि आपके लिए एक लाइन भी काम की है कि नहीं है। जैसे परसों जब मैं डीडी न्यूज पर देख रहा था तो एक घायल जो नौजवान थे उन्होंने कहा कि देखिए हमारे साथ सबसे बड़ी दिक्कत होती है कि हम सब बाहर से आए हुए लोग हैं, हम यहाँ छत्तीसगढ़ के किसी जंगल वंगल में के रास्तों को जानते नहीं है, तो बहुत अच्छा हो कि जो छत्तीसगढ़ पुलिस है हमारे आसपास से उनका भी एक कैंप लगाया जाए और पुलिस हमारी मदद करे, छत्तीसगढ़ पुलिस, क्योंकि वो यहां की चीजों से परिचित है। अब उन्होंने एक उपाय बताया, एक नया अच्छा उपाय है, ये आपको नोट कर लेना चाहिए। एक एडिटोरियल कमेंट में मैंने देखा कि सर्वेलियंस करने के लिए, मतलब आजकल ऐसे ड्रोन या ऐसे सैटेलाइट सिस्टम आ गए हैं जो पूरे के पूरे उस क्षेत्र का, एक क्षेत्र में जो लोग हैं उनके मूवमेंट आपको प्रोवाइड कर सकते हैं, चित्र आपको भेज सकते हैं, तो इससे उन पर निगरानी रखी जा सकती है। उपाय के रूप में ये एक बहुत अच्छा सुझाव आया है। 8 मई में, अभी 8 मई को अभी बैठक होने जा रही है, उस समय एक तरीके से मुझे लगता है कि कुछ एक्शन प्लान ही हमारे सामने आ जाएगा। तो ये वो पॉइंट्स हैं मित्रों जो आपको नोट करते जाना चाहिए, बस इतनी ही तैयारी सफिशियंट होगी सिविल सर्विस के लिए, क्योंकि जब आपके पास इतने कंटेंट इकट्ठे हो जाएंगे तब आप उसके एनालिसिस करने की स्थिति में पहुंच जाएंगे। तो ये नेक्स्ट पॉइंट था फ्रेंड्स, भारत श्रीलंका संबंध की न्यूज थी। देख रहे हैं कि बहुत ज्यादा ऐसी बड़ी बात नहीं हुई, अदरवाइज तो भारत श्रीलंका के संबंध बहुत मायने रखते हैं और आपको इस टॉपिक पर तैयारी भी करनी है। मित्रों एक जो बहुत इंपॉर्टेंट खबर है उसको थोड़ी सी उसकी चर्चा में करना चाहूंगा, वो है खासकर सेबी को लेकर के, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी। उसमें आपने देखा कि एक सेबी ने जो बात कही है, जो रोक लगा दी कि जो पार्टिसिपेटरी नोट्स होते हैं, पार्टिसिपेटरी नोट के जरिए जो प्रवासी भारतीय और जो अनिवासी भारतीय हैं उनके भारत में निवेश पर रोक लगा दी गई है। इसे मैं थोड़ा सा आपको समझाता हूं इस स्मरण के साथ कि हमारे जो पहले के स्टूडेंट रहे हैं, पुराने स्टूडेंट, शायद मेरे समझ से 4th बैच तक के स्टूडेंट, उनको मालूम होगा कि पार्टिसिपेटरी नोट्स पर मैंने उन्हें स्पेशल ऑडियो गाइडेंस प्रोवाइड किया है, तो पार्टिसिपेटरी नोट्स को बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। देखिए पार्टिसिपेटरी नोट्स क्या है, मतलब पार्टिसिपेट कर रहे हैं आप, एक नोट का मतलब है हस्तलिखित दस्तावेज नोट, और पार्टिसिपेट करने वाली जिस नोट के जरिए, जिस दस्तावेज के जरिए आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। पार्टिसिपेट किसमें कर सकते हैं, पार्टिसिपेट करने का मतलब हमारा जैसे भारत है, भारत में, तो भारत के कैपिटल फॉर्मेशन में, भारत में पूंजी निवेश कर सकते हैं, राइट। पूंजी निवेश करते कैसे हैं, जो विदेश से हमारे यहां पैसा आता है फ्रेंड्स वो FII के जरिए आता है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूशंस, फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। तो वहां बड़ी बड़ी जैसे एक कंपनी है, अब वो कंपनी क्या करेगी कि वहां रहने वाले जितने भारतीय हैं उनसे कहेगी कि भाई अगर आप भारत में पूंजी निवेश करना चाहते हैं, शेयर मार्केट का में खरीद फरोख्त करना चाहते हैं, तो आप हमको पैसा दे दीजिए, हम आपके बिहाफ पर खरीद फरोख्त कर देंगे, ठीक है। तो अब जो विदेश में रहने वाला जो भारतीय है वो उस कंपनी को पैसा दे देगा, मान लीजिए कि उसने उसको $1,00,000 दिए कि हमारा ये पैसा भारत में इन्वेस्ट करो, तो कंपनी उसको एक लिखित कागज दे देगी, मोटे तौर पर समझाने के लिए मैं कह रहा हूं कि भाई आपने $1,00,000 हमको दिए हैं, इस पर्पज से दिए हैं, वो एक लिखित प्रमाण पत्र उनके पास हो गया। अब वो जो कंपनी है वो कंपनी उस $1,00,000 को भारतीय शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करेगी, राइट। अब भारत सरकार इस FII से पूछे, अगर कहती है कि भाई ये पैसा कहां से आया, तो FII का पैसा है। अब वो FII ये नहीं बताएगी कि साहब उसके पास ये पैसा कहां से आया, वो इसके लिए बाध्य नहीं है कि वो उसका नाम बताए कि उसको पैसा किसने दिया। FII कह रहे कि ये पैसा हमने आपको दिया है, तो हमको पता नहीं चल पाता है कि ये पैसा किसने दिया, और पता लगा कि जिसने पैसा दिया है वो पैसा ब्लैक मनी का है, भारत से कोई उसको भेज रहा है हवाला के जरिए, तो वो एफआईआई को दे दे रहा है। तो अब हुआ क्या कि हवाला के जरिए ब्लैक मनी, अब आप समझिए कि ब्लैक मनी $1,00,000 अगर मेरे कोई रिश्तेदार है तो मैंने उनको दे दिया, चलिए या ये तो बकायदे सिस्टम से काम भी होता है, लेकिन मैं समझाने के लिए रिश्तेदार को मैंने भेज दिया $1,00,000। $1,00,000 का मतलब मैं ₹65,00,000 भेज दिए, $1,00,000 उसको वहां मिल गया, $1,00,000 उसने एफआईआई को दे दिया। तो जैसे ही एफआईआई को दिया वो व्हाइट मनी हो गया और वो भारत के मार्केट में आ गया, एक अब वही पैसा वापस आ रहा है। मतलब जो हमारे यहां ब्लैक मनी था पहले, वही ब्लैक मनी अब व्हाइट मनी होकर हमारे पास वापस आ रहा है। तो सरकार ने इस पार्टिसिपेटरी नोट के जरिए भारतीय बाजार में निवेश करने पर प्रतिबंध लगा दिया है, ये सेबी ने लगाया है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि सरकार ब्लैक मनी के खिलाफ काफी स्ट्रिक्ट धीरे धीरे होती जा रही है और ऐसे ऐसे रूल्स रेगुलेशंस कानून लेकर के आ रही है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये टॉपिक पार्टिसिपेटरी नोट से रिलेटेड नहीं है, सच पूछे तो ये टॉपिक अभी जो आपके काम का है वो ये कि ब्लैक मनी को रोकने के लिए सरकार क्या क्या कदम उठा रही है। तो उसमें ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लेटेस्ट स्टेप है कि पार्टिसिपेटरी नोट के जरिए जो प्रवासी और अनिवासी भारतीय हैं उनको निवेश पर से प्रतिबंधित कर दिया गया है। तो मित्रों एक खबर शेयर मार्केट की हाइट को लेकर के थी कि ऑल टाइम हाई शेयर मार्केट रहा, चलिए उस पर हम लोग बात नहीं कर रहे हैं। जहां तक न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग्स का सवाल है, एक क्लिपिंग्स मैं प्रोवाइड कर रहा हूं, स्पेशली उधर ध्यान दिलाना चाहूंगा, उसको आप लोग जरूर पढ़िएगा। जो कृषि है उस पर टैक्स लगाने के बाद, इनकम टैक्स लगाने के बाद नीति आयोग ने यह बात कही है, लेकिन सरकार ने उसको टर्न डाउन किया कि नहीं हमारा कोई ऐसा प्रपोजल नहीं है कि हम एग्रीकल्चर पर टैक्स लगाएंगे। लेकिन ये एक मुद्दा है, विचारणीय प्रश्न है, इस पर आपको तैयारी करनी चाहिए और इस रूप में तैयारी करनी चाहिए कि कृषि पर आयकर लगाया जाए या न लगाया जाए, लगाने पर क्या नुकसान होंगे, क्या फायदे होंगे, अभी क्या क्या नुकसान हो रहे हैं, क्या क्या फायदे हो रहे हैं, कौन सा रास्ता निकलना चाहिए, इन पॉइंट्स को आधार बनाकर आप इसकी तैयारी कर सकते हैं। तो ये मुझे इंपॉर्टेंट ये टॉपिक लग रहा है। तो मित्रों न्यूज़पेपर्स की और मैं क्लिपिंग्स प्रोवाइड कर रहा हूं, लेकिन खुशी की बात यह है कि आज क्लिपिंग्स की संख्या काफी कम है। अब मैं आता हूं आज के ईमेल पर। ईमेल लिखने वाले सभी दोस्तों के प्रति आभार व्यक्त करता हूं, उन्हें धन्यवाद देता हूं, और उन्हीं में से कुछ मित्रों के नाम मैं ले रहा हूं। वो है सुजीत कुमार समस्तीपुर बिहार से, पूनम सोनवानी रायपुर छत्तीसगढ़ से, प्रमोद कुमार यादव मुंबई से, प्रहलाद सोनी भीलवाड़ा राजस्थान से, आनंद जान राव लातूर महाराष्ट्र से, अर्जुन कुमार भोपाल मध्य प्रदेश से, पावेल दत्ता कोलकाता से, ब्रह्मदीन वर्मा, ललित कुमार रुड़की उत्तराखंड से, दिव्य प्रकाश सिसोदिया बिजनौर उत्तर प्रदेश से, और पंकज कुमार मीना दौसा राजस्थान से। आप सबका भी बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत धन्यवाद। और मित्रों इसी के साथ ही अब आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को यहीं समाप्त करना चाहूंगा। नमस्कार।